اگلی ٹپلی تھی افسردگی خودکشی کا دروازہ. یعنی اکثر وہ لوگ جو سوسائڈ کرتے ہیں خودکشی کرتے ہیں وہ ڈپریشن کے مریض ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تقتلوا انفسکم, مت اپنے آپ کو قتل کرو, اور کہیں کا ولا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ, اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. خبر رساں ایجنسیوں کے حوالے سے یہ خبریں آتی رہیں کہ افسردگی کا مرض سابق صدر امریکہ کا رولارٹ ریگن کو بھی لاحق ہو گیا تھا, جس کا سبب یہ تھا کہ اس کی عمر 70 سال سے اوپر ہو چکی تھی, جبکہ کئی اور بھی امراض ان کو لگے ہوئے تھے اور جلدی جلدی ان کے کئی آپریشن بھی ہوئے تھے. یعنی اتنی بڑی مملکت کا صدر بھی ڈپریشن کا شکار ہوا تو باقی کیسے نہ ہوں گے. اور اگرچہ تم مضبوط برجیوں میں کیوں نہ ہو, ان کے علاوہ اور بھی کئی مشہور لوگ ہیں خاص طور پر جو آرٹ سے جڑے ہوئے ہیں, انہیں یہ بیماری لاحق ہو جاتی ہے. شاعر صلاح جاہین کی موت کا بنیادی سبب اکتاہٹ اور افسردگی کو ہی بتایا جاتا ہے, اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ نیپولین بوناپارٹ بھی جلا وطنی میں افسردہ دلی کا شکار ہو کر مر گیا, یعنی ڈپریشن کی وجہ سے. ان کی روحیں نکلتی ہیں کفر کی حالت میں, یہ قرآن کہتا ہے. گزشتہ دنوں ایجنسیوں کے حوالے سے ایک خبر بھی دنیا بھر کے اخبارات نے نقل کی اور چرچا کا یعنی شہرت کا باعث بنی رہی, کہ ایک جرمن ماں نے گھنونے جرم کا ارتکاب کیا کہ اس نے اپنے 3 بچوں کو مار ڈالا. پتہ چلا کہ اس کا سبب یہ تھا کہ وہ ڈپریشن کا شکار تھی. اسے اپنے بچوں سے شدید محبت ہی سے خوف ہوا کہ ان بچوں کو بھی اس کی افسردگی لاحق ہو جائے گی, اس لیے اس نے فیصلہ کیا کہ ان 3 کو قتل ہی کر دیا جائے تاکہ انہیں یہ عذاب نہ لگے. اس کے بعد اپنے آپ کو بھی مار ڈالا. دیکھیں یہ بھی تو غلط فیصلے انسان سے پھر ڈپریشن میں شیطان کرواتا ہے نا. عالمی ادارہ برائے صحت کے اعداد و شمار معاملے کی نزاکت بتاتے ہیں, چنانچہ 1973 میں دنیا بھر میں افسردگی کا شکار 3% ہے. یعنی 70s میں صرف 3% لوگوں کو ڈپریشن ہوتا تھا, 1978 میں یہ تناسب بڑھ کر 5% ہو گیا. ایک ریسرچ یہ بھی بتاتی ہے کہ ہر 4 امریکیوں میں سے ایک شخص ڈپریشن کا شکار ہے, جبکہ 1981 کو شکاگو میں ہونے والی نفسیاتی اضطراب سیمینار کے صدر نے اعلان کیا کہ دنیا میں 100 ملین لوگ افسردگی کا شکار ہیں, جن میں زیادہ تر ترقی یافتہ ممالک سے تعلق رکھتے ہیں. ایک اور رپورٹ بتاتی ہے کہ دنیا میں 200 ملین افسردگی یعنی ڈپریشن کے مریض ہیں. اور اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ یہ نہیں دیکھتے کہ ہر سال ایک بار یا 2 ان کو آزمایا جاتا ہے. ایک حکیم نے کہا کہ لیمو سے میٹھا شربت بنائیے. ایک نے کہا ذکی اور عقل مند وہ نہیں جو اپنے فائدوں میں اضافہ کر لے, بلکہ وہ ہے جو اپنے نقصان کو بھی فائدے میں بدل لے. یہ وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی رحمت اور سلامتی ہے اور جو ہدایت یاب ہیں. ایک مثال یہ ہے کہ دیوار سے سر نہ ٹکراؤ, مفہوم یہ کہ ایسے شخص سے تصادم مول مت لیجئے جس کی دشمنی سے آپ کو کوئی فائدہ نہ ہو, اور بقول شاعر جس چیز کو آپ نہ کر سکیں اسے چھوڑ دیں, اور اسے چھوڑ کر جو کر سکتے ہوں اس میں لگیں. ایک کہاوت یہ بھی ہے کہ آٹے کو نہ پیسو تو اس نے تمہیں غم پر غم پہنچایا تاکہ تم اپنے فوت شدہ پر اداس نہ ہو, اور جو تکلیف تمہیں پہنچی اس پر افسردہ نہ ہو. سورۃ آل عمران میں غزوہ احد کے تناظر میں یہ آیت جب نازل ہوئی تو صحابہ کو کیا لگی ہوگی کہ اچھا اتنی چوٹیں احد میں لگ گئیں, آج مجھے آپ کو اس کو اپنی زندگی کے معاملات پہ لے کر دیکھنا اور سوچنا ہے. مفہوم یہ کہ جو معاملات پیش آ چکے اور گزر گئے اب ان کو نہ دہرایا جائے. جتنا ہم دہراتے ہیں نا اتنا غم بھولتا نہیں. اب دیکھیں نا زخم ہے, بار بار کھرچیں گے تو کھرین آیا وہ اتر جائے گا, خون نکلے گا, ایک دن پس بھی پڑ جائے گی. تو بینڈیج رکھ دیجئے, پھاہا رکھ دیں زخموں پہ. کہیں سنا کہ بندروں میں کوئی بندر اگر زخمی ہو جاتا ہے تو دوسرے بندر مل کر اس کی تیمارداری کے لیے جاتے ہیں, اور وہاں جا کر اس کے اس زخم میں انگلیاں ڈال ڈال کر اس کو اور گہرا کر دیتے ہیں. آپ بھی جتنا زیادہ تذکرہ کریں گے, بار بار سوچیں گے, پلٹیں گے, اگر کسی کو اولاد کا غم پڑ گیا, کوئی اپنا بڑا پیارا قریبی فوت ہو گیا, دوستوں میں کسی کا کوئی پیارا چلا گیا, پیاروں میں کوئی چلا گیا, تو مرہم رکھیے اور اس کو مصروف کر دیں. آج کل تو ویسے ہی بہت طرف سے ایسی باتیں آ رہی ہیں. کل بھی کسی کی بات تھی تو انہوں نے کہا کہ ان کی بہت قریبی دوست کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی. اسی طرح کسی ایک نے اسی سے ملتی جلتی اور خبر دی تو میں نے انہیں کہا کہ آپ ان کو ये सीरीज सुनवा दीजिए। आप और मैं और कुछ कर तो नहीं सकते ना, वापस तो नहीं ला सकते ना दुनिया से गेमों को, तो उनको बहला तो सकते हैं। अब देखिए कि माँ ने बच्चे को इंजेक्शन तो लगवाना है, वो तो लगेगा, बहलाने लग जाती है, कभी सामने झुंझुना दिखाती है, कभी गाड़ी की चाबी दिखाती है, और इतने में इंजेक्शन लग जाता है। तो आप भी लोगों को बहलाइए, क्योंकि इस खुलक, इज़तिराब और बेचैनी से वक्त ज़ाया होने के अलावा कोई फ़ायदा ना होगा। एक अंग्रेजी कहावत है कि आरे को मत चीरो, यानी जो लकड़ियाँ चीरी जा चुकी हैं अब दोबारा मत चीरो। इस वक्त कहा जाता है जब आदमी मामूली बातों में लगता है, तफक्कुरात की जुगाली करता है और माजी को कुरेदता है। वो जिन्होंने घर बैठे रहकर अपने भाइयों के बारे में कहा कि अगर उन्होंने हमारा कहा माना होता तो यूं कत्ल ना किए जाते, ना होते। कहिए कि तुम अपने आप को मौत से टाल कर दिखाओ अगर तुम सच्चे हो, यानी ये भी गजवे उहद के तनाजर में बातें मौजूद हैं, और गजवे तबुक के तनाजर में भी। शायर ने कहा, सुलगती यादों कुरेदो ना मेरे माजी को, जराहतों का कोई वो भी सिलसिला होगा। जराहत कहते हैं ऑपरेशंस को, इल्मुल जराह मतलब ये कि तुम मेरी यादों को खोद खोद कर उसका ऑपरेशन क्यों करते हो। जो लोग बेकार बैठे हैं इनके लिए करने के बहुत से काम हैं, मसलन अच्छे अमाल करें, लोगों को फायदा पहुंचाएं, मरीजों की इयादत करें, कब्रों की जियारत कर लें, मस्जिदों पर तवज्जो दें, अच्छी सोसाइटियों में शिरकत करें, अहबाब की मजलिसों में शिरकत करें, घर और लाइब्रेरी को तरतीब दें, नफा बख्श वर्जिश करें, फकीरों बेवाओं और मोहताजों को फायदा पहुंचाएं। यानी जब आप पॉजिटिविटी में लगते हैं तो इंशाल्लाह फायदा ही होता है। तुम अपने रब से मिलने के लिए कोशिशें और मेहनतें करके इससे मिलने वाले हो, अनकरीब मिल जाओगे। तारीख का मुताला करें ताकि मुसीबत जदों, महरूमों और आफत के मारों के बारे में पता चले। चंद अबवाब के बाद इनके बारे में बस तफसीलात अर्ज की जाएंगी, यानी कुछ कहानियां हम पढ़ेंगे। बकौल शायर, तारीख पढ़िए इसमें इबरतें हैं, जो लोग हालात नहीं जानते वो गुमराह हो गए। अम्बिया के वो किस्से हम आपको सुना रहे हैं जिनसे आपके दिल को ढारस मिले। अल्लाह ताला ये जुमला अपने नबी को कुरान में कहते हैं, और इनके किस्सों में इबरत है। इन्हें गुज़श्ता कौमों के किस्से सुनाइए ताकि ये सोचें। हजरत उमर ने फरमाया, मैं इस हाल में सुबह करता हूँ कि तकदीर के फैसलों से तमत्तो के सिवा और कोई चाहत नहीं, यानी मेरे बारे में तकदीर का जो भी फैसला मैं उससे फायदा उठा लूं, मुझे मौत जहां चाहे फेंक दे, मैं तो शुजात में ही पला बड़ा हूं। मतलब ये कि वो कजा व कदर के सामने सर तस्लीमे खम करते थे। जी ये नोट कीजिए, एक्सेप्टेड, चाहे इनके हक में हो या इनके दिल इनके लिए कड़वे हों। एक से ये भी बात मिलती है, कहते हैं कि मुझे परवाह नहीं, किसी सवारी पर बैठूंगा, फकर मिलेगा तो सब्र करूंगा, मालदारी होगी तो शुक्र करूंगा। यही है मोमिन का मामला, खुशी में शुक्र और दुख में सब्र। अबू ज़ैब अल हज़ली के 8 लड़के ताउन से एक ही साल में मर गए पेट की बीमारी। इससे क्या कहने की उम्मीद की जा सकती थी, कोई क्या कहे जिसके 8 बच्चे एक साल में मरे। कह लीजिए कि 8 फसलें कटी, 8 खेतियां कट गईं। इसने ईमान का सबूत दिया और तस्लीमो रजा से काम लिया और कहा, हाईलाइट कीजिएगा इस जुमले को, कहते कि हासिदों के सामने मैं इस्तकामत का मुजाहरा करता हूँ ताकि इन्हें पता चले कि गर्दिशे जमाना से मैं उखड़ नहीं जाता। जब मौत ने अपने पंजे गाड़ दिए तो मैंने पाया कि किसी तावीज ने फायदा नहीं दिया। क्योंकि देखिए ना, जितना आप रोते हैं धोते हैं, सब्र का दामन छोड़ते हैं, तो हसद करने वाले तो खुश ही होंगे ना, और हर एक के साथ होते हैं हसद करने वाले। कुल्लुजी नेमतिन महसूद, और जो भी मुसीबत होती है वो अल्लाह की तरफ से होती है। इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हु की बिनाई चली गई, उन्होंने अपने आप को तसल्ली देने के लिए कहा, हाईलाइट कीजिए, अगर अल्लाह ने मेरी आंखों की रोशनी ले ली है तो मेरे दिल और रूह में तो नूर है। मेरा दिल जकावत से माला माल है, यानी जकी हूँ, समझदार हूँ, जीनियस हूँ। मेरी अकल में कजी नहीं, यानी टेढ़ी नहीं, अकल अभी भी ठीक काम करती है। मेरे मुंह में तलवार की तरह चलती जुबान है। अल्लाह की बहुत सी नेमतों में से एक नेमत उन्होंने खोई तो दूसरी नेमतों को याद करके तसल्ली हासिल की। अल्लाह हमारी आंखें मरते दम तक सलामत रख। इतने नेक लोगों के साथ ये मामला हो गया तो आप मैं तो किसी खेत की मूली नहीं है। अल्लाह की बहुत सी नेमतों में से एक चली जाए तो याद कीजिए कि और भी तो बहुत सी हैं। उरवा बिन जुबैर का पांव कट गया, यानी हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा के भांजे थे। इनका बेटा उहद के मैदान में काम आया तो फरमाया, ए अल्लाह सारी हम तेरे लिए है, अगर तूने ले लिया तो तूने ही तो दिया था, तूने आजमाया है तो तूने ही तो आफियत दी थी, तूने चार आजाद दिए, एक उज्व ले लिया और चार बेटे दिए और एक बेटा ले लिया, यानी चार में से एक ले लिया और चार मतलब दो हाथ और दो पांव थे, तो इन चार में से एक तूने ले लिया। तभी तो अल्लाह ताला कहते हैं ना, सूरह दहर की आयत है, इनके सब्र के बदले इन्हें जन्नत और रेशम मिलेगा, जन्नत व हरीरा। और कहा क्या जाएगा, सूरत राद गालिबन, तुम्हारे सब्र की वजह से तुम पर सलाम हो, सलामुम बिमा सबर तुम फनेमा उकबतार। दरीद का भाई अब्दुल्ला कत्ल कर दिया गया तो दरीद ने अपने आप को यूं तसल्ली दी कि पहले ये याद किया कि मकदूर भर यानी जितनी ताकत हो कुदरत हो अपने रिसोर्सेज को यूज करके इसका दिफा किया, लेकिन कजा व कदर को कोई टाल नहीं सकता। इसने अपने भाई के मरसिए में कहा, मैंने लश्कर से इसका दिफा किया हत्ता कि मुझे चारों तरफ से काले रंग के नेजों ने ढांप लिया। मैंने ऐसी नेजाबाजी की जैसे भाई का गम ख्वार ही कर सकता है, यानी भाई को ही बचाने के लिए बंदा इतने नेजे फेंक सकता है वैसे नहीं। ये जानते हुए कि आदमी हमेशा रहने वाला नहीं, अपना गम यूं गलत करता हूं कि मैंने कभी इसे झूठा नहीं कहा, कभी इस पर माल खर्च करने में बुखल नहीं किया। कितनी बड़ी बात है, बस वह हमें अपने भाई बहनों के गम तोड़ देते हैं। मुसीबत जदों की तसल्ली के लिए इमाम शाफी से ये मनकूल है, फरमाया, गर्दिश जमाना को अपना काम करने दो, जो तकदीर हो इस पर राजी रहो। जब किसी कौम के बारे में कोई फैसला हो जाता है तो ना जमीन इसे पना दे सकती है ना आसमान। अबुल अताहिया के एक शेर का मफहूम है, कितने ही नामसाइद हालात यानी एडवर्स कंडीशंस तुम्हें घेर लेते हैं जिनको तुम पसंद नहीं करते, हालांकि अल्लाह ताला ने इसमें खैर रखी होती है। कितनी ही मरतबा हम मौत से डरते हैं लेकिन मौत नहीं आती, कितनी ही बार हम समझते हैं बस अब खात्मा हुआ चाहता है लेकिन वो औदातुल जदीदा यानी बार बार के लौट के आने वाली चीज और कुव्वत और इस्तमरारी यानी मुस्तकिल साबित होती, यानी हम समझते हैं कि अब मरने वाले हैं लेकिन वो बार बार बदल बदल के रंग आती है और कुछ भी नहीं होता। कितनी ही बार हमारे रास्ते बंद और रस्तियां कट जाती हैं, आफाक तारीख हो जाते हैं तो क्या देखते हैं कि फतह और नुसरत अच्छी खबर और बशारत आ जाती है। इस वक्त अगर आप बहुत दुखी है ना तो ये बात सोचिए, जैसे दुख अचानक आया ना ऐसे सुख भी अचानक आएगा। जी, हमारे अपने साथियों में किसी के वालिद की सडन डेथ हुई और उसी दिन के आगे पीछे के फर्क से उनको अल्लाह ने नवासा भी दे दिया। किसकी खुशी किसका गम, तो जब वो खुशी आ सकती है तो ये गम भी आ सकता है। कह तो कि अल्लाह ही है जो तुमको हर कर्ब और बला से निजात देता है। कितनी ही बार हमारे सामने हमारी दुनिया तारीख हो गई, हमारे नफ्स और दुनिया अपनी वसतों के बावजूद हम पर तंग हो गए तो क्या देखते हैं कि खैर कसीर आसानी और ताईद हासिल हुई। यानी कभी कभी जिंदगी में बहुत बड़ी तकलीफें आती हैं लेकिन उसके अंदर से खैर बहुत बड़ी निकलती है। और अगर अल्लाह तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाना चाहे तो इसको इसके अलावा और कोई दूर नहीं कर सकता। जो जानता है कि अल्लाह इसके मामले पर गालिब है वो किसी दूसरे से नहीं डर सकता। जो ये जान ले कि हर एक अल्लाह से कमतर है तो कौन किसी से डरा सकता। जो अल्लाह ताला से डरता है वो इसके गैर से क्यों डरेगा। अल्लाह ताला का इरशाद है, तुम इनसे मत डरो, ला तखाफुहुम, मत डरो उनसे, वखाफुनी, और मुझ ही से डरो, आले इमरान 175 है। तो अल्लाह सुभान ताला के पास ही इज्जत है, इसका रसूल और मोमिनीन ही मुअज्जज़ हैं। इसने फरमाया, हमारे ही लश्कर गालिब हैं, हम अपने रसूलों की मदद करेंगे और अहले ईमान की दुनिया की जिंदगी में भी और आखरत में भी। अल्लाह हमें ईमान वाला बना दे, फिर तो खुशी और गम दोनों ही कबूल हैं। इब्ने कसीर ने अपनी तफसीर में एक हदीस कुदसी नकल की, मेरी इज्जत और जलाल की कसम, मुझसे किसी बंदे ने पनाह ली और जमीन आसमान इसके खिलाफ हो गए तो भी मैं इसके लिए खुलासी और कुशादगी पैदा करूंगा। मेरे जलाल और इज्जत की कसम, किसी बंदे ने मेरे गैर की बना ली तो मैं इसके पांव के नीचे से जमीन सरका दूंगा। इसको अपने हाथ से लिखिएगा, है भी हदीसे कुदसी, यानी ला मलजा वला मंजा मिनका इल्ला इलैक। हमारी जुबान में कहते हैं कि माँ मारे और बच्चा मामा पुकारे, पास बैठी दादी फुफी खाला नानी उस रोते बच्चे को पकड़े ना तो आप देखते हैं कि बच्चा नहीं आता, माँ ही की गोद में घुसता। ये है असल में इसमें, अल्लाह तकलीफ दे उसी के पास आइए, और गैरों के दरों पे और उनके आस्तानों पे जाकर मांगेंगे तो जमीन भी नहीं मिलेगी। इब्ने तैमिया रहमहुल्ला फरमाते हैं, ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्ला, के जरिए से बोझ उठा लिए जाते हैं, खतरनाक मामले बर्दाश्त हो जाते हैं और अच्छे हालात पैदा कर लिए जाते हैं। बस अल्लाह के बंदे इसे लाजिम पकड़ ले कि जन्नत के खजानों में से एक खजाना है, खुशबख्ती की एक दफा है, आराम और राहत और शरह सदर के रास्तों में से है। यानी ला हौल वला कुव्वता कहना खुशबख्ती की एक रोड है, रास्ता है। क्या पता चला आपने मैंने अपने लिए क्या लिया? ये लिया कि अपने आप को खुदकश नहीं करना। सुसाइड और इस्लाम दो मुख्तलिफ चीज़ें। ज़रा सा सोचिए, नाउमीदी खुदकुशी की एक बड़ी वजह। क्यों? इसलिए कि हामीम सजदा 49, ला यस्समुल इंसान मिन दुआइल खैर वाइम मस्सहु शर्रु फयऊसुन क़नूत। भलाई की दुआएं तो करते थकता नहीं है इंसान, और तकलीफ पहुंच जाए तो नाउमीद होता है, आस तोड़ बैठता है। तो जो डिप्रेस्ड है ना, डिप्रेशन का मरीज, उसकी आस टूट चुकी होती है, आप उसको उम्मीद दिलाइए। सवाल है कि खुदकुशी के अमूमी वजूहात क्या हैं? तो सबसे पहले तो नाकस ईमान, फिर डिप्रेशन, फिर नाउमीदी, बेयकीनी, नामवाफिक हालात भी एक छोटी सी वजह होती है जो सबसे बड़ी वजह दिखती है लोगों को। बेचारे के पास ये था, बेचारे को ये हुआ, फिर उसने खुदकुशी कर ली, ये क्या बात हुई? फिर इसी तरह फकर फाका भी एक वजह बताई जाती है, कोई धोखा दे गया, किसी ने बेवफाई की। लेकिन बात है नाकिस ईमान की। खुदकुशी करने वाले की क्या सजा है? सही बुखारी 1363, आपने फरमाया, जो शख्स इस्लाम के सिवा किसी और दीन पर होने की छूटी कसम कसदन खाए, यानी इरादे के साथ खाए, तो वो वैसा ही हो जाएगा जैसा कि इसने अपने लिए कहा है। और जो शख्स अपने को धारीदार चीज यानी तेज चाकू वगैरह से जिबा कर ले, तो इसे जहन्नुम में इसी हथियार से अजाब होता रहेगा। अल्लाह ताला बचा के रखे। सवाल है कि खुदकुशी इतनी बुरी है तो इससे कैसे बचें? तो लीजिएगा खुदकुशी से बचाव का नुस्खा। अल्लाह पर ईमान पक्का कीजिए, पुरउम्मीद रहिए, बेकारी से बचिए, गम और हुजन से बचिए, और पुरखलूस लोगों के साथ रहिए। इंशाल्लाह जिंदगी की उम्मीद पैदा होगी। तो ये तो था ला हौल वला कुव्वता इल्ला का राज। अगला जुमला लीजिए, इस्तिग़फार से बंद ताले खुल जाते हैं। कह लीजिए कि इस्तिग़फार तालों को खोलने वाली चाबी है। इब्ने तैमिया रहमहुल्ला फरमाते हैं, मेरे ऊपर मसला बंद हो जाता है, मैं हजार बार या इससे ज्यादा या कम इस्तिग़फार पढ़ता हूँ तो अल्लाह ताला इस मसले को मेरे लिए खोल देता है। अब गिनती कोई नहीं है, कभी कम, कभी ज्यादा, कभी हजार भी, हम गिनती में पढ़ के रूह को खत्म कर देते हैं। तो वजह सूरत नूह की आयत है, फकुल तस्तग़फिरु रब्बकुम इन्नहु काना गफ्फारा। तो मैंने कहा, अपने रब से इस्तग़फार करो, बिलाशुबा वो बहुत माफ करने वाला है। आराम के असबाब में से अल्लाह से इस्तग़फार भी एक है। बहुत सी मुश्किलात फायदा देती हैं, अल्लाह ताला जो भी फैसला करता है वो खैर ही होता है, हत्ता के मासियत भी। मुस्नद में वारिद है कि अल्लाह बंदे के लिए जो भी फैसला करता है वो इसके लिए खैर होता है। इब्ने तैमिया रहमहुल्ला से कहा गया, क्या मासियत भी, यानी गुनाह? फरमाया, हाँ, अगर इसके साथ तौबा नदामत हो, इस्तग़फार और इनकिसार हो। अगर ये लोग जब अपने हक में जुल्म कर रहे थे आपके पास आ जाते और अल्लाह से इस्तग़फार करते और रसूल भी इनके लिए दुआ करते तो ये अल्लाह को तौबा कबूल करने वाला और मेहरबान पाते। सूरत निसा 64 है। यानी गिल्ट होता है गुनाहों का, उस गिल्ट को दूर करने के लिए आपके पास आते, रोते धोते, फिर आप भी इनके लिए माफिया मांगते तो इनके दिल का बोझ हल्का होता। अबू तमाम ने खुशी और नखुसत के दिनों के बारे में कहा, कुछ दिन खुशी के और मुसरत के गुजरे लेकिन वो सबसे मुख्तसर थे। फिर इसके बाद अय्याम हिजर आए जो इतने दराज लगते थे जैसे एक दिन साल भर का हो। फिर ये और वो सब दिन गुजर गए गोया के ख्वाब था, जो कुछ के देखा, जो सुना वो फसाना था। और अल्लाह ताला तो फरमाते न तिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन्नास। ये अय्याम है जिनको हम लोगों के माबैन उलटते पलटते रहते हैं। आले इमरान 140 है। गोया के जब उन्होंने इसको देखा तो वो बस एक शाम या सुबह को ठहरे थे। कितना जिए, कलम हिल बसर है कहीं, कई यौम अनौबाद यौम है, यानी दुनिया बस एक दिन का कुछ हिस्सा लगेगी क्यामत के दिन। मुझे तारीख के बड़े लोगों पर हैरत है कि वो मसाइब का ऐसे इस्तकबाल करते थे जैसे वो बारिश की बूंदें या शबनम के कतरे। सोचिए जरा इस पे, क्या हम भी मुसीबतों को ऐसे वेलकम कहते हैं? और इनमें सबसे आगे सैयदुल खलाक यानी सारी मखलूक के सरदार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जो गार में अपने साथी से कह रहे थे, ला तहजन इन्नल्लाह हमाना, घबराओ नहीं यकीनन अल्लाह हमारे साथ है। हिजरत के रास्ते में जबकि अपना घर छुट गया था, लोग ताकुब में थे, इस पर भी आलम यह था कि सुराका को किसरा के कंगन पहनाए जाने की बिशारत दे रहे थे। शायर ने कहा, गार के अंदर गैब की तरफ से वो बिशारत आई किसने दुनिया के लिए छुपे हुए राज खोल दिए। बदर के मार्के में अल्लाह के नबी जिरा पहने मैदाने जंग में आयत पढ़ते हुए आते हैं, सयहज़मुल जम्मू व युवल्लूना दुबर, जल्द ही ये शिकस्त खुर्दा होकर भाग जाएंगे। मैदाने उहद में जख्मी होने और कत्ल की खबर उड़ जाने के बावजूद सहाबा से फरमाते हैं, मेरे पीछे सफ बंदी करो ताकि रब्बे ताला की हमदो सना करूं। ये नबवी शुजात थी जो सुरैया को छू रही थी, नबवी इरादा था जो पहाड़ों को हिला डालता, यानी एक नबी के इरादे के आगे पहाड़ भी ना ठहरे। कैस बिन आसिम अरब के हलीम लोगों में थे, एक दिन बैठे लोगों से ये कोई किस्सा कह रहे थे कि एक आदमी आया और उसने कहा, अभी अभी आपके बेटे को फुला ने कत्ल कर दिया। उन्होंने ना अपना हलका तोड़ा ना किस्सा खत्म किया। बात पूरी हो जाने के बाद कहा, बेटे को गुसल दो, तकफीन करो, कफन पहनाओ और फिर नमाज के लिए मुझे बताना। ये कैसे लोग थे, इनके दिलों में कोई गुदास नहीं था और जिस्म में दिल था भी कि नहीं, बस ये हमें नहीं समझ आता। हमारा कल्चर है गम मनाने का, मनाते हैं 2 2 दिन, 3 5, फिर 8 दिन, फिर 10 दिन, फिर 40 दिन, फिर हर साल याद करते हैं उस गम के दिन को। तो याद रखिएगा, ये जिंदगी बहुत थोड़ी है गम मनाने के एतबार से। अल्लाह तो नेक लोगों की बात क्या कहते हैं, ये लोग खुशहाली और तंग हाली हर हाल में सब्र करते हैं। इकरमा बिन अबी जाहल को सकराते मौत में पानी दिया जाता है तो कहते हैं, पहले फुला भाई को पिला दो, यानी हारिस बिन हिशाम को। इसी तरह यके बदीगरे इन लोगों के पास पानी ले जाया गया, हद तक सब की रूह परवास कर गई। और शायर ने क्या कहा, जब इनका कत्ल हुआ तो अपने खून से अपनी बुजुर्गी की आबियारी की, शहादत इनकी पुरानी आरजू थी। एक और शायर ने यूं कहा, दुनिया का बड़ा आदमी तो वो है जो दुनिया में किसी आदमी पर मुनहसिर न रहे। नहीं, जंगे यरमूक का ये किस्सा कैसे ईसार और रगबत सिखाता है। तो फिर क्या सीखा आपने, मैंने इस्तिग़फ़ार कीजिए दिल की गहराई से। सूरत नूह 10, फकुल तुस्तग़फिरू रब्बकुम इन्नहू काना गफ्फारा। फायदे क्या हैं, सुकून और राहत मिलेगा, गुनाहों का कफारा बनेगा, अल्लाह की रहमत मिलेगी, मसलों का हल होगा। इब्ने माजा की रिवायत है 3819, अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह अन्हो कहते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने इस्तिग़फ़ार को लाजिम कर लिया तो अल्लाह ताला इसे हर गम और तकलीफ से निजात देगा और हर तंगी से निकलने का रास्ता पैदा फरमा देगा। इसे ऐसी जगह से रिस्क अता फरमाएगा जहां से इसे वहमो गुमान भी ना होगा। तो इस्तिग़फ़ार के बहुत सारे फायदे हैं। अल्लाह दिल की गहराई से नदामत के एहसास के साथ हमें इस्तिग़फ़ार करने वाला बना दे।